शांति। आज के सायंकालीन क्लास में हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिट्टा जी पधारे, हम आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं क्योंकि ये चंडीगढ़ का ग्रुप बैठे हैं तो जानते ही होंगे भ्राता जी को, सभी जानते क्योंकि आप भी चंडीगढ़ से ही बाबा का ज्ञान लिया है और ग्लोबल हॉस्पिटल में अभी सेवाएं दे रहे हैं। यज्ञ में वरिष्ठ बहनें, दादियां, भाई जो भी हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से एडवाइस करते हैं, बहुत प्यार से उनको एडवाइस करते हैं उस बीमारी के लिए। और आज आपके बीच में कुछ चिटचैट करेंगे ज्ञान योग की और आपसे मिलने भी विशेष भ्राता जी आए हैं, तो अभी हम आदरणीय भ्राता जी से सुनेंगे।
ओम शांति। हम सभी जीवन यात्रा पर हैं। बाबा कहते हैं हमारी ये रूहानी यात्रा है। ये यात्रा करते करते हम कभी कभी हमारे स्टेशन चेंज हो जाते हैं, तो चंडीगढ़ से मैं मधुबन पहुंच गया। ये मालूम भी नहीं है कि कैसे हुआ। ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी है, ड्रामा में हर सीन का महत्व भी है, और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान हैं तो बाबा के सेवा स्थान तो जाते हैं तो बुद्धि में क्या लक्ष्य रहता है। जिस जहां आपने पढ़ाई पढ़ी है, अपना बचपन बिताया है, अपने आप को परिपक्व किया है, तो वहां की याद तो रहती है। मुझे याद है कि मैं सिक्स्थ में पढ़ता था जब हम लोग चंडीगढ़ में आए थे 61 में, और फिर 91 में यहां आए 30 साल के बाद। तो 30 साल का समय बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहां भी रहते अभी 25 वर्ष हो गए। तो बाबा कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चंडीगढ़ के परिवार से स्नेह बहुत मिला, पालना बहुत मिली, बहनों से ज्ञान योग की शिक्षा मिली, और जिस शिक्षा के आधार पर ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं। बाबा ने हम सबको लाइट रहना तो सिखाया है, वैसे भी आत्मा प्रकाश स्वरूप है, लाइट हमें हल्के भी रहना है और साथ साथ प्रकाश स्वरूप भी बनना है और लाइट हाउस भी बनना है। उसके लिए हमें क्या करना है? सेवा में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, सेवा में कितना भी हमें अवसर मिले, जिम्मेवारी मिले, लेकिन सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी किसके प्रति है? अपने प्रति। पहले तो स्व की संभाल करनी है। बाबा कहते भी हैं स्व स्थिति से विश्व परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो फाउंडेशन क्या है हम सबकी? हम कहीं भी पहुंच जाएं तो फाउंडेशन तो स्व परिवर्तन है। स्व की संभाल तो करनी बहुत जरूरी है। हम सेवा की संभाल करते हैं, सेवा में रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी हम सब निमित्त हैं। करण करावन हार तो बाबा है। जो भी हमें जिम्मेवारी मिलती है वो भी जिम्मेवारी देने वाला बाबा है। क्योंकि बाबा को मालूम है कि हम उस जिम्मेवारी को निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते हैं। जब मैं यहाँ आया था, मुझे याद है, जब अव्यक्त बाबा से एक बार मिल रहे थे तो बाबा ने कहा कि देखने में तो छोटा है लेकिन जिम्मेवारी बड़ी है। तो जब मैं यहाँ आया था तो हमने जब आरंभ किया था तो केवल छोटा सा हॉस्पिटल था, सिर्फ 10 बेड थे, और धीरे धीरे जब वो फोन की पे बात करते थे तो मैं सोचता फोन की क्या आवश्यकता है, छोटा सा तो हॉस्पिटल है। लेकिन धीरे धीरे हमने जब शुरू किया था हम मुश्किल से 30 लोग थे और आज 1000 लोग हैं सेवाधारी जो भाई बहने काम करते हैं। ये हॉस्पिटल तो इसका विस्तार तो हुआ, ये अब 100 बेडेड है, और नीचे भी ट्रॉमा सेंटर, आई हॉस्पिटल, फिर उसके बाद एक एल्डरली सीनियर सिटीजन्स के लिए होम भी बना, फिर नर्सिंग कॉलेज बना, नर्सिंग स्कूल बना, फिर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करने की जिम्मेवारी मिली। तो बढ़ते बढ़ते आज उसका विस्तार बहुत हो गया, लेकिन किसने किया? वो बाबा ने किया। भविष्य तो किसी को मालूम नहीं होता, हमें तो नहीं मालूम था, तो जैसे लोग सहयोगी बनते गए, लोग सहयोगी बनते गए और सेवा करने वाले भी साथ में जुड़ते गए, तो ये तो बाबा की ही कमाल है। लेकिन इस सब कमाल के पीछे तो हम सब की अपनी स्थिति है। बाबा कभी कभी कहता भी है कि हम सब लोग बहुत तीव्रता से ये इंतजार करते हैं कि ये सृष्टि कब बदलेगी, ये दुनिया तो अब हमारे रहने लायक रही नहीं है, यहाँ का कोई सुख हमें भाता नहीं है, कभी गलती से भी लौकिक में चले जाएं तो क्या लगता है जितनी जल्दी छुट्टी मिले वापस आए, जाना तो पड़ता है। अगर परिवार में रहते हैं तो लौकिक संबंधों में जाना पड़ता है, लेकिन जाते किस लिए? फॉर्मेलिटी के लिए। बाबा कहते हैं उनकी भी सेवा करनी है, उस लिए जाते हैं, लेकिन मन तो वहां नहीं लगता है। मन तो केवल ये करता है कि हम अपने अलौकिक परिवार में रहें, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका ही बदल गया है। बाबा ने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन सबसे पहले हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल पे किया, हमारे सोचने के तरीके पे किया। लोग क्या समझते हैं? लोग तो समझते हैं धन कमाना है, परिवार को पालना है, लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा? ये सब कुछ भी, ये जो जन्म है, आज की मुरली भी हमने सुनी, ये जन्म भी हमारा किस लिए? सेवा अर्थ है। सेवा भी कौन सी सेवा है? अपने जीवन से सेवा, अपने वाइब्रेशन से सेवा, अपने कर्मों से सेवा। बाबा आजकल हम बच्चों को बताते हैं कि मन से सेवा करें हम, तो उसके लिए मन को कितना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। मन को शक्तिशाली तो बनाना पड़ेगा, तभी सेवा कर पाएंगे। और मन को भी शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? जब अपने जीवन में कुछ सेंस ऑफ कंट्रोल होगा कि हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे विचार, हमारे संकल्प हमारे कंट्रोल में होंगे, जो हम सोचना चाहें, जो हम संकल्प क्रिएट करना चाहें, जो हम सुनना चाहें वही सुने। बाबा कहते हैं ना कि देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं सुने संसार की बातें, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो, जो मैंने कहा, अपनी संभाल करनी है, और अपनी संभाल भी बहुत प्रेम से करनी है। ये जो हमारी आत्मा है इसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो कभी कभी पुराने संस्कार भी आएंगे, लेकिन उस समय भी हमें बड़े प्रेम से अपने मन को समझाना है कि ये मेरा मरजीवा जन्म है। ये जन्म जो है वो पुरानी दुनिया की बातें हैं, पुराने संसार की बातें हैं। इस जन्म में मेरा लक्ष्य क्या है? इस जन्म में ना तो मेरे जीवन में निराशा आ सकती है, ना कोई कठिनाई आ सकती है, ना कोई मतभेद आ सकता है। ये तो हमें पक्का है ना, इस जीवन में हमें कोई कठिनाई आ सकती है, कोई मुश्किल आ सकती है? मुश्किल जो होती है वो कहते हैं ना, मन जीते जीत है, मन से हारे हार है, मन जीते जगत जीत। तो मुश्किल कहाँ आती है, हमें अपने आप पर जो अपना संयम नहीं होता, अपना कंट्रोल नहीं होता। बाबा ने हमें यही बताया कि हम आत्माओं के अनादि संस्कार जो थे वो सबको सुख देने के थे, सबको प्रेम, सबके साथ प्रेम से चलने के हैं। सतयुग से जो हमारे संस्कार हैं वो सब संस्कार तो सबके साथ सुख से रहने के हैं ना, सबको सुख देने के हैं। तभी तो कभी कभी बाबा कहते हैं कि आप दाता के बच्चे हो, मास्टर बिस्टोअर हो। जो दाता के बच्चे होंगे वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे क्या, किसी से कुछ आशा रहेगी हमारी? कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूँ, हमने इसके लिए इतना प्रबंध किया, लेकिन इसको इसकी वैल्यू ही नहीं है। वो तो सबकी अपनी अपनी सोचने का तरीका है। हमें तो बाबा ने दाता बनाया कि हम सब, दादी जी जो कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स हो हमारे, बाबा भी हमेशा बार बार कहते हैं सबके लिए शुभ चिंतन और सबके शुभ चिंतक बन के रहे। लेकिन शुभ चिंतन कब होगा, जब हमारा मन क्लीन होगा, मन प्योर होगा। अगर मन में नेगेटिविटी होगी तो हम शुभ चिंतन कैसे करेंगे, हमारी भावनाएं शुभ कैसे होंगी? तो इसलिए मन को तो हमें नेगेटिविटी से निकालना ही है। कभी भी कुछ भी कठिनाइयां आती हैं तो हम अपने मन को समझाते हैं कि मन तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है बाबा की श्रीमत पर चलना। जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जो श्रेष्ठ धारणाएं दी हैं, उस पर चलना। जब हम संगठन में काम करते हैं तो हमारे संगठन में तो क्या है, ब्राह्मण भी हैं, कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जिनकी आत्मा का दीपक अभी जगा नहीं है, सब तरह के लोग हैं, कभी बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं और साधारण काम करने वाले भी हैं। तो क्या होता है, कितना कम्प्लेक्स हो जाता है। तो उस कम्प्लेक्सिटी को समझते हुए कि सबका रोल अपना है, हम कहते भी हैं ना, हम सब इस, ये वर्ल्ड एक स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं, तो सबके रोल को एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। ये जो हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं ना, कभी कभी हम सबके रोल को एक्सेप्ट नहीं करते। बाबा कहते हैं ना, मन में प्रश्न उठता है, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब हम एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस में डाइवर्सिटी तो होगी ना, वैरायटी तो होगी, सभी एक्ट्रेस एक तरह के तो नहीं हो सकते ना, हर एक का रोल अपना है, हर एक का रोल डिफरेंट है। तो कार्य करते हुए, सेवा करते हुए ये बुद्धि में रखना पड़ता है कि हम सभी एक्ट्रेस हैं, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, हमें हीरो एक्टर का पार्ट प्ले करना है। आज भी बाबा ने कहा ना कि आप हीरो हो, साथ में ये भी कहा कि आप हीरे भी हो, डायमंड हो ना। ये कन्फ्लुएंस का जो हमारा जन्म है, संगम युग का जो जन्म है, वो हीरे तुल्य है। तो इस हीरे तुल्य जन्म की वैल्यू हमें होनी चाहिए ना, क्यों, क्या, कैसे, इसमें जाएंगे तो क्या होगा, मुश्किल तो आएगी, फिर हम उलझन में पड़ जाएंगे। वो बाबा जैसे कहते हैं ना, भूल भुलैया, जैसे हम यात्रा करते हैं, यात्रा में अपना फोकस नहीं हो कि अगर साइड सीन में चले जाएं तो क्या होगा, गलियों में चले जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सेवा कर रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, तो उस समय ये भी समझना जरूरी है कि हम ट्रेवलर तो हैं लेकिन साथ साथ हम एक्ट्रेस भी हैं। सबका डाइवर्स रोल है, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। और मैं किसी का रोल नहीं प्ले कर सकता। अगर मैं ये सोचूं कि किचन में काम करने वाले खाना ठीक नहीं बना रहे, ये खाना तो अच्छा नहीं बनाते, तो मैं तो जाके खाना नहीं बना सकते। बनाना तो उनको ही है, तो उनके रोल को एक्सेप्ट करके, उनके साथ प्रेम से बात करके, अगर हम वहां उनके साथ बैठ के उनकी डिफिकल्टी को जानकर चलते हैं तो क्या होगा? उसका जो परिणाम होगा वो सुखद होगा। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, क्रिटिकल हो जाएं किसी के कार्य के प्रति, किसी के व्यवहार के प्रति, तो क्या होगा? हम अपना रोल भूल जाएंगे और दूसरे के रोल की तरफ देखने लग जाएंगे। तो इसलिए हमको ये बुद्धि में रखना है कि मैं इस जीवन में आया हूं, बाबा ने जो मुझे श्रीमत दी है उसके आधार पे मुझे अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना है। मैं हमेशा ठीक करूं, जब भी कोई कार्य मिले मुझे एक्यूरेटली करना है, उस कार्य को, उस सेवा को मुझे एक्यूरेटली करना है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस कार्य को अच्छी तरह से समझूं, जानूं। नॉलेज ज्ञान अलग है, फिर उसके बाद हम समझते हैं, फिर जब करते हैं तो उसका अनुभव होता है, और जब बार बार अनुभव करते हैं तो फिर हम उसमें प्रोफिशिएंट बनते हैं, उसमें हम कुशल बन जाते हैं। तो इसलिए पहले समझना है, फिर करना है, और फिर अनुभवी बनते हैं, और अनुभव के आधार पे हम श्रेष्ठ बनते हैं। तो ये बार बार अभ्यास करना पड़ता है। अभी जैसे बाबा कहते हैं हम सभी के प्रति शुभ चिंतक बने, शुभ चिंतन करें। कभी कोई दूसरा थॉट आएगा भी, कभी कुछ ऐसी बात आएगी भी, तो फिर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमारी ब्रेक पावरफुल हो। गाड़ी में अगर सिर्फ एक्सेलरेटर हो और ब्रेक नहीं हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेक तो चाहिए, और ब्रेक के लिए बाबा ने हमें तरीके तो बहुत दिए हुए हैं। अब जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है, ये ब्रेक लगाने का ही तरीका है। हम जब कोई मुरली की पॉइंट लेकर चलते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, ये जैसे अपने आप को फिर से रीअफर्म करना होता है। दिन में कितनी बार अपने आप को समझाना पड़ता है, क्योंकि चलते चलते ये तो बाबा कहते हैं ना, ये परीक्षाएं तो पूछ के नहीं आती ना, डिफिकल्टीज, और छोटी छोटी बातें आएंगी। कार्य करते हुए, संगठन में रहते हुए छोटी छोटी बातें आएंगी। फिर हमें अपना रोल याद करना पड़ता है, अपनी धारणाएं याद करनी पड़ती है। तो ट्रैफिक कंट्रोल का समय होता है अपने आप को रिफ्रेश करने का। कंप्यूटर में भी हम कुछ करते हैं तो रिफ्रेश करने का एक बटन होता है। अगर कुछ नहीं लोड हो रहा तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं। ऐसे अपने आप को भी रिफ्रेश करने का एक बटन बनाए। और बाबा ने हमें, आजकल तो हम आवरली ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो हर घंटे में हमें अपने आप को रिफ्रेश करना है, चाहे वो हम 2 मिनट करें। बाबा ने कहा था एक बार वो 5 स्वरूपों की याद भी। तो ये सब चीजें जो है, ये साधन बाबा ने हमें दिए हुए हैं, लेकिन इनको यूज करना हमें है। अब आप जब कहीं भी किसी भी संस्था में सेवा करते हैं, काम करते हैं, तो चैलेंजेस तो आते हैं, कुछ सिस्टम्स फेल भी होंगे, कोई कठिनाई भी होगी, सब लोग एक्यूरेटली काम भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको हम कहते हैं डीब्रीफिंग। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद जो कठिनाइयां आई उसको हम डीब्रीफिंग करते हैं। अपने आप पे भी डीब्रीफिंग करनी पड़ती है। मैंने कुछ शुरू किया, कुछ अपने लिए लक्ष्य रखा, उसमें मैं 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें मुझे 50% सक्सेस मिली, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं सोचूं कि मुझे इसमें 100% बनने में कठिनाई क्या आई, क्या डिफिकल्टीज आई, उसको मैं लिखूं, ताकि दोबारा से जब मैं फिर अपना रिपीट करूंगा अपना अभ्यास, तो उन कठिनाइयों को बुद्धि में रखूंगा कि किन किन चीजों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था। हम लोग अपने अनुभव से सीखते हैं। डॉक्टर्स भी जितना काम करते हैं उतना अनुभवी बनते हैं। शुरू शुरू में जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन बहुत लंबी होती है, जैसे जैसे डॉक्टर्स अनुभवी होते जाते हैं तो उनकी दवाइयां भी कम होती जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर कार्य में अनुभव लें, जो कुछ भी बाबा हमें कहते हैं उसमें मेहनत करें। जरूरी नहीं कि हम पहली बार में 100% सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये कि अनुभवी बन जाते हैं, हमें हमेशा मदद मिलती है अपने अनुभव से। हमें ये सोचना है, अगर हम सोचते हैं कि हम निरंतर खुश रहें, निरंतर प्रसन्न रहें, तो उसके लिए क्या करना होगा? बाबा कहते हैं सबसे जरूरी है कि जो हम चाहते हैं वो दूसरों से शेयर करें। अगर हमें अपने जीवन में निरंतर खुशी चाहिए तो खुशी है, कहते हैं ना, जितनी शेयर करेंगे उतनी बढ़ती है, डबल हो जाती है। दुख शेयर करते हैं तो आधा हो जाता है और खुशी शेयर करते हैं तो दुगना ही हो जाती है। तो इसलिए मैजिक फार्मूला तो हमारे पास है, ये मैजिक फार्मूला तो हमें दिया हुआ, लेकिन अब इसके अनुभवी बनना है। किसी ने एक पुस्तक लिखी थी, वो भाई से मैं न्यूयॉर्क में मिला था, उस पुस्तक का टाइटल था Why good things happen to good people? कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही क्यों होता है? तो उसने रिसर्च की थी कि जो देने वाले होते हैं, चाहे हम किसी को थोड़ा सहारा दें, थोड़ी सपोर्ट दें, किसी के साथ मुस्कुरा के चलें, किसी को दो शब्द प्रेरणा के कहें, देना कोई स्थूल अर्थ से नहीं, लेकिन वो देना भी किस बुद्धि से है, किस वृत्ति से है, कि हमारी जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारी वृत्ति क्या है, इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी वृत्ति क्या है। अगर हमारी वृत्ति निस्वार्थ है कुछ भी करने में, वृत्ति में कुछ भी प्राप्ति की, जैसे बाबा कहते हैं प्राप्ति तो हमें होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो हम प्राप्ति करना चाहते हैं, उस प्राप्ति की जब मन में इच्छा नहीं होती तो उसको हम निस्वार्थ सेवा कहते हैं। और उस सेवा से जो प्राप्ति होती है, जो इनडायरेक्ट हमें प्राप्ति मिलती है, उससे रिसर्च में ये देखा गया कि जो लोग देते ही रहते हैं, बाबा तो कहते हैं ना एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगे, तो वो जो वो देना है उससे हमारा जो शरीर है वो भी रिष्ट पुष्ट रहता है। अब बाबा हमें कहते हैं योग से हमें निरोगी काया मिलती है। अब वो कैसे निरोगी काया मिलती है? यहां तो इतने रोग हैं, कुछ जन्म लेता है जन्म से ही कुछ ना कुछ रोग पीछे लग जाता है, तो योग से हमें निरोगी काया मिलती है और ज्ञान से हम संपन्न बनते हैं। तो योग से निरोगी काया कैसे मिलती है जी? ज्यादा खुशी में रहते हैं जी, विचार पावरफुल हो जाते हैं। बाबा ने हमें कहा ना, योग से हम अपने नेगेटिव कर्मों का चुकतू करते हैं। अब रोग भी और दुख भी क्यों आते हैं? हमारे नेगेटिव कर्मों के कारण। योग में ही योगी को अपने सारी भूलें रियलाइज होती है। रियलाइजेशन हमें कब होती है? जब योग में बैठते हैं। हम किसी की बात नहीं मानेंगे, कभी कभी तो अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, गलती की भी होगी तो कहेंगे नहीं नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया। लेकिन योग में जब हम बैठते हैं हमें रियलाइजेशन होती, तभी तो बाबा हमेशा ये कहते हैं योग से हम अपने 63 जन्मों के पापों से मुक्त होते हैं। और जब कोई नेगेटिव बैलेंस ही नहीं रहेगा तो फिर रोगी होने का कोई कारण ही नहीं है। योग में हमारे संकल्प भी शुद्ध होते हैं, संस्कार तो हम मिटाते ही हैं अपने। तो योग का आधार ही यही है कि योग, बाबा ने आज कहा ना कि कर्म करते हुए याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, ये एक लाइन थी मुरली में आज। तो हमें पता है कि हम कोई बैठकर योग करने वाले नहीं है, लेकिन चलते फिरते अगर हम कनेक्टेड रहते हैं तो क्या होता है, तो धीरे धीरे हम नेगेटिविटी से मुक्त होते जाएंगे और अंत समय की हमारी स्टेज ही यही है कि हम कंप्लीट निर्विकारी भी बनेंगे, कंप्लीट निरहंकारी भी बनेंगे और निराकारी स्वरूप की भी अनुभूति होगी, तो उससे हम निरोगी बनते हैं। इसमें भी कोई मैजिक नहीं है, बाबा कोई मैजिक नहीं करता, लेकिन बाबा हमें विधि बताता है कि अगर हम योगी जीवन होगा तो रोग आ नहीं सकते हैं। कंप्लीट योगी तो हम अंत में ही बनेंगे। अब भी आप देखो कि योगी जो है वो अपने रोग को कैसे भोगता है और भोगी कैसे रोग में मुश्किल होती है उसको। आप योगी आत्माओं को देखो, दादी जानकी को देखते हैं, कितनी डिफिकल्टीज हैं, कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन वो रोग को भी सेवा का साधन बना लेते हैं। सभी डॉक्टर्स की सेवा हो जाती है। तो भाव ये है कि हमारी मन की स्थिति जो है वो प्रभावित होती है। अभी जैसे किसी को पहले पहले शुरू में किसी को ये भी पता लगे, मुझे याद है एक भाई थे अपने, मधुबन निवासी थे, उनको जब डायबिटीज हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों डायबिटीज हो गई। तो भाव ये रोग होना भी कोई जैसे लोगों को शौक लगता है, वाई मी, मुझे क्यों हुआ। लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है, हमें अपने पुराने जन्मों के जो भी खाता है उसको चुकतू करना है, अकाउंट सेटल करना है। तो अकाउंट सेटल करने में तो खुशी होनी चाहिए ना, हाँ। जब कोई हम उधार चुकतू करते हैं तो क्या होता है, लाइट महसूस करते हैं। तो ये तो हम उधार अपना चुकतू कर रहे हैं। सो योगी जीवन ही हमारा निरोगी बनने का आधार बनता है और ज्ञान के आधार से हम संपन्न बनते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी जब बनते हैं तो हमारे पाप भी कटते हैं उससे। स्वदर्शन चक्रधारी, स्वयं का ज्ञान, स्वयं के कर्मों का ज्ञान, स्वयं की धारणाओं का ज्ञान, स्वयं की वीकनेसेस का ज्ञान, वो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से कटता है। तो हम आत्माओं को ये इतना कुछ बाबा ने दिया है, हम अभी से अपने आप को इतना संपन्न महसूस करते हैं, ये तो हमें लगता है ना कि हम आत्माएं इस जन्म में विशेष आत्माएं हैं, संपन्न आत्माएं। कुछ कमी महसूस होती है आपको अपने जीवन में, लगता है कि जो हमें मिला है हम इतने भरपूर हो गए हैं कि कुछ और जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में चाहिए, जो कुछ भी मुश्किल आती है, वो हमें मुरली में उसका आंसर मिल जाता है, रोज की मुरली में। कभी कभी हम सोचते हैं मुश्किल कोई मन में चल रही होती है, मॉर्निंग की मुरली सुनते हैं तो उससे हमें सेल्वेशन मिल जाती है, सॉल्यूशन मिल जाता है। मुरली को भी जब हम ध्यान से सुनते हैं, फोकस्ड होके सुनते हैं, आजकल हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो स्टेज है वो जागृत स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं जब हम भोजन भी करें तो क्या होता है, कभी कभी लोग आजकल में जैसे परिवार में होता है, सामने टेलीविजन होता है, हम भोजन भी कर रहे हैं तो पता भी नहीं लगता कि भोजन क्या किया, क्योंकि कॉन्शियसनेस कहीं और है। अभी बाहर की दुनिया में भी कहते हैं कि कॉन्शियस ईटिंग चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं, जब हम बातचीत करते हुए भोजन करते हैं तो भोजन ज्यादा भी ले लेते हैं। वो समझते हैं जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उसका कारण ये है कि हम खाते हुए जागृत नहीं है। तो जब हम कॉन्शियसनेस, उसको माइंडफुलनेस ईटिंग कहते हैं, कि हम कॉन्शियस होके भोजन ग्रहण करते हैं, और जब कॉन्शियस होके बाबा की याद में हम भोजन ग्रहण करते हैं, खुशी में भोजन ग्रहण करते हैं, तो थोड़ा भोजन खाते हैं, क्योंकि भोजन का स्वाद भी हम महसूस करते हैं। तो ये भी रिसर्च हुई कि जो लोग कम खाते हैं वो लंबी आयु जीते। सो देवताओं के लिए कहते ना वो 36 प्रकार के भोजन या 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो वो कितना खाते होंगे। योगी का भी जीवन क्या होता है, तो योगी जीवन में भी हम कम खाते हैं। तो इसलिए जितना हम योगी जीवन में रहेंगे, हमारी बुद्धि में ये रहेगा कि ये हमारा योगी जीवन है, सो उससे हमारे कष्ट सब समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते हैं, घर बार में रहते हैं, तो रहते हुए बाबा ने हमें क्या सिखाया कि लौकिक को अलौकिक बनाओ। अलौकिकता ही हमारे जीवन की आधार है। अब ये तो नहीं है कि हम कार्य नहीं करेंगे, अगर जो भी हमारा प्रोफेशन है, अब मुझे हॉस्पिटल मैनेज करना पड़ता है तो उसमें लौकिक चीजें भी हैं, सरकार से कितना कनेक्शन होता है, कभी कोई लाइसेंस लेना है, कभी कोई इंस्पेक्शन है, कभी कुछ बात आ जाती है, तो हर चीज की आप बैलेंस रखते हुए लौकिकता को समाप्त करके अलौकिकता में चलना। करना हमें सब कुछ है, ये नहीं कि कुछ छोड़ देना है। रिनाउंस तो नहीं कर रहे लोग, तो समझते हैं ना योगी जीवन का मतलब ये है कहीं हम जंगल में बैठ जाए, योगी तो उसको कहते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, तो मेरे को, मैं जब उनसे बातचीत करता था तो मुझे कहते हैं योगी जीवन, आप ब्रह्मचर्य में रहोगे फिर तो आपको सर भी मंडवाना पड़ेगा और नीचे भी सोना पड़ेगा फर्श पे। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आराम से बेड पे सोते हैं और सर भी नहीं मंडवाया। हाँ भले बाल अपने आप चले गए, वो भी विजडम की निशानी होती है। तो इसलिए बाबा ने हमें हर चीज को अलौकिकता में बदल दिया। दुनिया के लिए ब्रह्मचर्य की बात करना या पवित्रता की बात करना उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और हमारे लिए ये सबसे आसान था। पवित्रता को धारण करने में हमें कुछ समय लगा, क्योंकि एक संकल्प लिया कि हम अब बाबा के बन गए हैं, ये हमारा ब्राह्मण जीवन है, उसमें एक संकल्प हुआ और संकल्प से सब कुछ परिवर्तन हो गया। इसी तरह से जो हम छोटी छोटी वीकनेसेस हैं उनके लिए भी संकल्प लेना पड़ता है। मुझे याद है जब मैं चंडीगढ़ में काम करता था, वहां भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट था, तो एक बार कुछ सुबह सुबह फोन आ गया 4 बजे, वहां तो हॉस्पिटल में कुछ भी हो जाता है, एक वार्ड बॉय और एक डॉक्टर का झगड़ा हो गया था, रक्षाबंधन का दिन था, तो मैंने सोचा ये क्या मुसीबत आ गई, जाना तो पड़ेगा, झगड़ा हो गया वहां, झगड़ा निपटाने के लिए मैनेजमेंट में होते हैं तो ये सब करना पड़ता है। तो पहले तो मैंने डॉक्टर की बात सुनी, वो जिस वार्ड बॉय ने, किसी ने थप्पड़ मारा था डॉक्टर को, फीमेल डॉक्टर थी, तो मैंने तो उसी समय फोन पे कह दिया कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। वो पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो लड़का अरेस्ट हो गया, तो हॉस्पिटल में तो स्ट्राइक हो गई, वो हल्ला मच गया। जब तक मैं पहुंचा तो यूनियन वाले मुझे कहें कि आपने हमारे से तो पूछा नहीं, आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और ना ही मैंने अपने किसी सीनियर से पूछा था। तो फिर मैंने मन ही मन सोचा, उस समय तो मैंने कह दिया था, इंट्यूटिवली मन में थॉट आया और कह दिया, और वो नर्सिस कहें कि ये जो वार्ड बॉय था ये तो हमारे पास बैठा हुआ था, ये तो गया ही नहीं है डॉक्टर के कमरे में, थप्पड़ मारा ही नहीं है इसने, तो ये तो ऐसे एलिगेशन लगाते हैं। तो फिर मैंने जेल सुपरिंटेंडेंट दोस्त थे तो उनको फोन किया, क्योंकि जेल में ले गए थे उसको, तो मैंने कहा उससे जरा पूछो उसने क्या किया, वहां उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने थप्पड़ मारा, तो फिर मैं निश्चिंत हो गया, स्ट्राइक 2 घंटे में समाप्त हो गई। कभी कभी जैसे बाबा की टचिंग होती है और हमारा कर्म अपने आप राइट हो जाता है, लेकिन हम कनेक्टेड तो रहे बाबा से। जब तक मैं वहां से आया था वो लड़का रीइंस्टेट नहीं हुआ था। तो मुश्किल जब भी आती है तो हम बाबा को यही कहते हैं कि बाबा ये मुश्किल मैं अकेले नहीं कर सकता, आपको मेरे साथ रहना है। तो क्या होगा फिर, जिसका साथी है भगवान उसके लिए कुछ मुश्किल होगी, और मुश्किल भी नहीं होगी और राइट टचिंग भी होगी। तो बाबा हमेशा यही सिखाते हैं हमें कि कभी हम अपने आप को अकेला नहीं समझें, इतना बड़ा कार्य है। हाँ, मदद करने वाले सहयोगी होते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम आत्माओं की है। कार्य बहुत बड़ा है, हमें करना है और हम ही कर सकते हैं, ये भी हमें पता है। विश्व परिवर्तन का कार्य हम ही कर सकते हैं और कोई कर भी नहीं सकता, क्यों? किसी को वो समझ ही नहीं है। तो जितना जितना हम इस बात की कॉन्शियस में रहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम कंबाइंड रूप में हैं, बाबा कहते हैं शिव शक्ति हो, बाबा आपके साथ है। हम ब्रह्मा बाप को देखें, जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो उनका निश्चय कितना स्ट्रांग होगा, उनका फेथ कितना स्ट्रांग होगा। बाबा से उनको जो रियलाइजेशन हुई, जो प्राप्ति हुई, जो साक्षात्कार हुए, उसके आधार पे उन्होंने अपना चलता सब बिजनेस छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे और संभाल दिया 8 बहनों को और खुद अलग हो गए। वो मैजिक ही तो था। अगर हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ें कि कैसे एक आत्मा निमित्त बनी विश्व परिवर्तन के, आज तो आज हमारे साथ कितना बड़ा संगठन है, कितने भाई बहने हैं, कितना बड़ा परिवार है, विश्वव्यापी परिवार है। तो ये सोचें कि उनका त्याग, उनकी तपस्या कितनी बड़ी थी, और हम हमारे सामने तो वो बाबा रोल मॉडल है ना। हमारे सामने क्या कठिनाइयां हैं? कुछ भी नहीं है। बाबा के सामने कितनी अपोजिशन हुई थी, लेकिन फेथ क्या था? कोई जाके कहता भी है बाबा से, कुछ लोगों ने कहा भी कि बाबा ये पवित्रता की बात छोड़ दो, तो वो बाबा ने यही कहा ना कि मैं थोड़ी कह रहा हूं, शिव बाबा कह रहा है, उसको कहो। तो शिव बाबा हम सब बच्चों को जो डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पे हमारा जीवन बना है। इसलिए हमें सदा प्रसन्न रहना है। कोई कारण ही नहीं है कि हम खुश नहीं रहे, क्योंकि जब प्राप्ति हो रही होती है तो फिर खुशी तो रहती। हम बाबा का प्रेम एक दिन अनुभव करते हैं क्या? है, एक दिन हमें बाबा का प्रेम अनुभव हो गया, दूसरे दिन नहीं हुआ, मान लीजिए याद में हम बैठे तो। बाबा का प्यार तो हमारे साथ है, लेकिन बाबा भी कहते हैं ना कि बाबा का प्यार किन बच्चों के साथ है, जो कनेक्टेड है, जिनका बुद्धि योग मेरे साथ है। ये सारा तो हमारी बुद्धि का खेल है, हम बुद्धि को तो ही दिव्य बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, अपनी मन मत पे नहीं चले हम, कभी कभी हम मन मत को ईश्वरीय मत में फिक्स मिक्स कर लेते हैं। शुरू शुरू में कभी कभी कुछ डिसीजंस होते थे तो मुझे लगता था ये डिसीजन ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि यूज करते थे। बड़ों के डिसीजंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा बुद्धि में ये रखें कि जो भी मुझे करना है वो श्रीमत के आधार पे करना है। हम दादी जी को देखते थे, एक बार मन में संकल्प आया कि ये सब मेरे बस का नहीं है, तो मैंने दादी को कहा कि मेरे से ये नहीं होता। तो दादी ने मुझे कहा, ये संकल्प कहां से आया, किसने आपको कहा, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी, तो ये क्या भूल गए? तो फिर से रीअफर्म किया मुझे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बाबा ने दी है, दादी ने तो आपको नहीं कहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे मिली? तो इसलिए हम अपने रोल के महत्व को जब समझते हैं तो फिर हम निराश नहीं होते। अपने आप पे भी फेथ रहना बहुत जरूरी है। हमारा ड्रामा में फेथ है, बाबा में फेथ है, क्योंकि हमारा अपना, अपने जो संकल्प है, हमारे पोटेंशियल को, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उनको विकास नहीं होने देती। बाबा को तो पता है ना कि हमारे में क्या विशेषताएं हैं, बाबा को ये भी मालूम है कि हम कौन सी आत्माएं हैं, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे अपने संकल्प ही हमारे विकास में रुकावट बन जाते हैं। जब बाबा हमें कहता है कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो हम क्या सोचते हैं? ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम उस बात के साथ साथ ये जरूर समझें कि हमें अपने आप पे फेथ रखना है, ताकि हम अपने विकास में खुद रुकावट नहीं बने, अपनी ग्रोथ में रुकावट नहीं बने। उसके लिए बुद्धि में हमेशा ये रखना पड़ेगा कि मैं कल पूर्व वाली आत्मा हूँ। बाबा जैसे कहते हैं, आप पूर्वज आत्माएं हो, आप तो फाउंडेशन आत्माएं हो। तो जब बुद्धि में ये रहता है कि ये कार्य तो मैंने अनेक बार किया हुआ है, तो फिर कुछ मुश्किल भी आएगा तो हम क्या करेंगे? निवे भाई कभी कभी कहते थे, कुछ बिल्डिंग बनानी होती थी, वो कहते थे, बाबा अच्छा हमें स्मृति दिलाओ, कल पहले कैसे बनी थी ये बिल्डिंग, कैसे ये निर्माण हुआ था, कैसे लगती थी ये बिल्डिंग। तो जैसे एक अपनी रिकलेक्शन की बात है, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से कनेक्ट करने की बात है, रिफ्रेश करनी है अपनी मेमोरी के मैं पूर्व जन्म में क्या था, मेरा रोल क्या था। तो हम सबका जो ये जीवन है उसकी फाउंडेशन है हमारा अपना निश्चय। अपने ऊपर जब फेथ होता है, निश्चय होता है, तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। और जब डाउट आ गया, वो कहते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, डाउट्स कैन क्रिएट माउंटेन्स ऑल्सो। ना निश्चय से अगर पहाड़ हट सकते हैं तो संशय से पहाड़ आ भी सकते हैं हमारे जीवन में। तो इसलिए हम यही सोचें कि हमारा निश्चय पक्का है, हमने बाबा को जीवन दिया है, हमारे जीवन का मालिक वो है। हमारी सेफ्टी किस चीज में है? सेफ्टी बाबा की श्रीमत पर चलने में है, सेफ्टी नियमों पर चलने से है। वैसे भी कोई भी कार्य होता है, जैसे सड़क पर भी हम चलते हैं, तो सेफ्टी किस चीज में है? वहां लिखा होता है सेफ्टी सेव्स। तो सेफ्टी नियमों में चलने में है। तो इस जर्नी में भी हमें अपनी नियमों में, अपनी धारणाओं में, अपने अनुभवों से चलने में सेफ्टी है। किसी दूसरे की बात सुनने में सेफ्टी नहीं है, किसी मुश्किल को रिकलेक्ट करने में सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी इस बात में है कि जो हमने इस ज्ञान से सीखा है, जो अपने जीवन में धारण किया, उसके आधार पे हमारी फाउंडेशन हो, तो हम सेफ रहें, हमारी जो भी कर्म है वो सेफ हो। सेफ्टी उसी में है कि कहीं भी टकराव नहीं हो, कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं हो। इंटरेस्ट जब हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन हम सबका इंटरेस्ट क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करना, हमारा इंटरेस्ट तो ये है ना। तो हमारे इंटरेस्ट जब डिफरेंट होते हैं तब कन्फ्लिक्ट होती है, तो उसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लोगों में जो टकराव होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में या पॉलिटिकल पार्टीज में टकराव किस लिए होता है? कि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। और सब हम सबका इंटरेस्ट क्या है? हम सबकी विजन में क्या है? कि हम सबको एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है जिसमें मतभेद हो ही नहीं, जिसमें कन्फ्लिक्ट हो ही नहीं। तो इसलिए हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम बाबा के योग्य बच्चे बने, हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। उसके लिए पहले तो अपने आप को योग्य तो बनाना पड़ेगा ना, कैपेबल बनाना पड़ेगा। जब हम अपने आप को कैपेबल बनाएंगे, एबल बनाएंगे, हमारी कैपेसिटी होगी, तभी बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो हमारा सारा फोकस अपने आप के ऊपर होना चाहिए। ये जरूर है कि अपनी संभाल करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि बाबा जैसे कहते हैं ये शरीर पुराना है, इसकी भी संभाल करनी है। हमारा भोजन भी राइट होना चाहिए, हमारी नींद भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या भी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर शरीर में कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो उसके लिए सेल्वेशन भी लेनी चाहिए। ये नहीं कि योग से ठीक हो जाएगा। अब सर में दर्द हो रहा है, और सर में दर्द हो रहा है नींद की कमी के कारण, तो नींद पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो दर्द तो रहेगा, सिर में दर्द हो रहा है कुछ व्यर्थ संकल्पों के कारण। तो जब तक उसको मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम एस्पिरिन या पैरासिटामोल खा भी लेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए अपनी नींद भी अच्छी करनी है, और फिर साथ साथ ये भी हम कहते हैं शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करनी है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं, जस्ट वॉकिंग, वो भी जरूरी है। और सबसे पहले वो सब कब हो सकता है? जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ये सब कुछ संभव होता है। लोगों का प्रश्न यही होता है कि हमारे पास समय नहीं है, एक्सरसाइज कब करें? तो हमको तो बाबा ने सिखाया हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो अपने आप को मैनेज करना, अपनी संभाल करना ही हमारी उन्नति का फाउंडेशन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्व स्थिति से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हमारा स्लोगन है, लेकिन हमको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारा ये जीवन सुखी होगा तो आने वाले अनेक जन्म अपने आप स्वतः सुखी बन जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी डिविनिटी है, जो रॉयल्टी है, उसका एक्सपीरियंस तो हमें यही करना है। और बाबा तो बार बार मुरलियों में भी हमें ये कहते हैं लंबे समय तक का अभ्यास चाहिए, लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना हमारा लंबे समय का अभ्यास होगा, जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी, उतना हम परफेक्ट बनेंगे। तो संपन्नता का आधार ही है कि हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें और परफेक्ट बनते रहें, उसी में आधार है। ओम शांति। कुछ किसी को पूछना हो तो 5 मिनट है, कुछ भी पूछना चाहें।
पूछने कुछ चंडीगढ़
ट्रेन में आया था नहीं, प्रेरणा तो ये थी कि यहाँ से निमंत्रण मिला। मुझे अचल बहन कहते थे कि आपने मेरे से पूछा नहीं, वो कहते भी थे कभी कभी, क्योंकि जब निमंत्रण मिलता है और आप मन से निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो सब मुश्किलें सहज हो जाती हैं। मुझे याद है मैं चाहता था, क्योंकि वहां गवर्नमेंट में था, सरकारी जॉब में था, तो छोड़ के आना था। तो निवे भाई तो रोज मुझे पत्र लिखते थे कि जल्दी आओ। तो दोस्त थे मेरे गवर्नमेंट में, तो उनको मैंने कहा मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे रिजाइन क्यों करते हो, आप यही रहो ना, थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेके चले जाओ। मैंने कहा देखो ऐसे थोड़े दिन के लिए तो मुझे जाना नहीं है, वहां तो नया काम शुरू करना है तो रहना पड़ेगा। तो जब उन्होंने देखा कि मेरा इरादा पक्का था तो उन्होंने कहा अच्छा आप वहां से एक पत्र लिखवाओ ट्रस्ट से कि आपको हम डेपुटेशन पे भेजते हैं। तो आप देखिए चंडीगढ़ में था, हरियाणा से डेपुटेशन पे था, हरियाणा से राजस्थान में आना, और वो भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट में आना। लेकिन सरकार में एक शब्द होता है पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो सेक्रेटरी हेल्थ थे ना, वो मेरे मित्र थे, तो वो कहते थे ये शब्द ऐसा है हम लिख देंगे इन पब्लिक इंटरेस्ट, आपको डेपुटेशन पे भेज रहे हैं। तो मैं 5 साल के लिए यहां डेपुटेशन पे आया। उससे ये फायदा हुआ क्योंकि वहां मैंने 15-16 वर्ष काम किया था, तो मुझे अब पेंशन मिलती है। तो बाबा ने जैसे वो पालना का आधार भी बना दिया। तो शुरू में सरकार ने ही मुझे यहां भेजा, मेरे से पूछा आप जाने के लिए तैयार हो, जब वहां से रिक्वेस्ट आई, क्योंकि मेरी कंसेंट चाहिए थी। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो आना ही था। तो मैंने कहा हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो फिर वो मुख्यमंत्री तक फाइल जाती है। तो जो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी थे वो भी मित्र थे, क्योंकि सब लोग वहां आते थे। तो उन्होंने मेरे सामने ही फाइल पे लिख दिया, मुख्यमंत्री ने देख लिया है और अनुमोदन कर दिया और अपने साइन कर दिए और फाइल वापस भेज दी। तो बाबा जैसे मुश्किल कार्य को भी इतना सहज कर देता है। फिर जब 5 साल बीत गए तो फिर मैंने सोचा फिर अभी क्या करना है। अभी तो फिर वहां जाके मैंने ज्वाइन किया, 3 महीने काम किया और फिर यहां वापस आ गया अपनी वॉलेंट्री रिटायरमेंट को लेकर। तो ये भी एक मैजिक था। तो जब हमारे इरादे नेक होते हैं तो सब कुछ मदद करती। तो इसलिए ये भी एक मैजिक था कि भाई डेपुटेशन पे यहाँ आए, 5 साल काम किया और फिर वापस जाके पेंशन लेके आ गए।
जैसे हमारी हिस्ट्री में महाराणा प्रताप का नाम आता है ना, ऐसे ही हमारी ग्लोबल हॉस्पिटल में के विस्तार इतनी सेवाओं में हमारे प्रताप भाई का नाम बहुत बहुत याद किया जाता है यहाँ पर। बाबा के ऐसे विशेष रतन चंडीगढ़ से निकले हैं, है ना, ये चंडीगढ़ वालों के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। बहुत सुंदर धारणा की बातें हम सब ने सुनी कि हमें देने का भाव रखना है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो दूसरों को देता है वो सदा खुश रहता है ना। आप सब लोगों ने गीत सुना होगा, स्कूलों में वो प्रार्थना में भी होता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। उसमें एक लाइन बहुत सुंदर है, ये ना सोचो हमें क्या मिला है, पर ये सोचो कि हमने क्या दिया है। तो जैसे लक्ष्मी का हाथ सदा देने में रहता है, तो ऐसे ही देने की भावना से ही प्रताप भाई यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल में आए कि हमें सेवा करनी है। और ये भी आप सबको मालूम होगा कि जब से हमारी ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाएं शुरू हुई हैं, माउंट आबू का आसपास में आदिवासी एरिया बहुत है, तो बहुत अच्छी तरह से जो आप ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट की तरफ भी हमारा संस्था का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है संस्था का, कि ब्रह्मा कुमारी बहने केवल धर्म की बात नहीं करती हैं, केवल स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर्स भी हैं। ये इमेज बनी जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में वो ग्लोबल हॉस्पिटल से ही बनी है, और सारी सेवाओं का श्रेय हमारे प्रताप भाई को जाता है। जितना भी स्टाफ है हमारे पास, बहुत सारे भाई बहन ग्लोबल हॉस्पिटल के जोधपुर में भी आते रहते हैं, यहाँ भी मिलते रहते हैं, सबको संतुष्ट करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, ऐसी धारणा युक्त बाबा के बच्चे का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज आप हमारे बीच में आए और हम सबको अपने अनुभव से आपने लाभान्वित किया। ओम शांति। सेवा का भाव ही इनको ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके आया। मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा ने की दृष्टि थी आपके ऊपर, और हमारे जीवन का ही अनुभव है, बाबा तो भृगु ऋषि है, भृगु ऋषि की तरह हर एक की जन्म पत्री को जानता है कि किसको कहाँ पर हमें सेवा दे करके उस आत्मा का भी भाग्य बनाना है और भगवान को भी अपना कार्य करना है। ओम शांति।
साथ तुम्हारा प्रभु इतना है प्यारा, इतना है प्यारा।